مولانا فضل الرحمان ایک ریلیجیس لیڈر ہی ہیں نا, دا کار ہی ڈرائیوز, دی ایسٹس واٹ ہی ہیز, ڈو یو تھنک کہ ایک عام آدمی وہ افورڈ کر سکتا ہے؟
آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن دوسری طرف آپ یہ دیکھیے نا کہ شبلی فراز, حماد اظہر, یہ سب جو ہیں, مطلب کہ فواد چودھری, یہ سب جو ہیں یار نواز شریف کے ارد گرد کے حلقے کو دیکھے, سب پڑھے لکھے ہوئے ہیں نا, احسن اقبال ہیں, مطلب چاہے
مگر ان کے پیچھے کے خاندانوں کی بھی تو بات کریں نا.
نہیں وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ دیکھیے کہ یہ ہم کہہ کے نا کہ بھائی تعلیم کی کمی ہے, ہم تو عموماً عام طور سے لیبل کرتے ہیں, لیکن جو طبقہ بھی ہمارے یہاں حکمرانی میں آیا ہے وہ ان میں پڑھے لکھوں کی کمی نہیں ہے. بلکہ میں اب آپ کو بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان کی پارٹی میں ایک ایسا شخص گیا ہے امریکہ سے جو انتہائی تعلیم یافتہ اور سب سے بڑا پاکستان کا امیر شخص تھا, وہ آج بھی آپ کے ہاں جو ہے وہ وزیر ہے, ٹیکسس کا رہنے والا ہے, پڑھا لکھا ہے. مولانا فضل الرحمان جیسے لا علم آدمی کی جو ہے تحویل میں اس نے سب سے پہلے سینٹ کی سیٹ اپنے لیے خریدی. کہنے میرے جو کہنے کا مطلب ہے, میری جو عرض ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو تعلیم ہے, تعلیم کی کمی نہیں, ہمارے ہاں حکمران طبقے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں, مگر ان میں وہ تعلیم یافتہ جو ہے ان کی تعلیم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکی, کیونکہ وہ اپنی خاندانی روایات اور خاندانی کشش اور عصبیت کے غلام ہیں. اس وجہ سے ان کی تعلیم ہوتے ہوئے بھی وہ بالکل مطلب کہ گنواروں جیسی حرکتیں کرتے ہیں, اور اسی بندے نے جو اتنا پڑھا لکھا تھا, اس نے اپنے پڑوس میں ایک بسنے والے غریب خاندان جو ہے اس کو جیل میں صرف اس لیے بند کرا دیا تھا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ اس کے لان میں کہیں کھیلنے کے لیے آ گیا تھا, اور اس کے لیے جناب علی انہوں نے مطلب کہ کیا. وہ آج بھی وزیر ہیں آپ کے یہاں. تو کہنے کا مطلب یہ وہی ہے کہ میں آپ کی بات کی تائید کر رہا ہوں کہ تعلیم کا ہونا یا نہ ہونا نہیں, ہمارے حکمران طبقے میں تعلیم کی کمی نہیں ہے, لیکن ان میں جو ہے ان سب کو جو ہے وہ پرانی روایات, قبائلی عصبیت, تعصب اور ولگیریٹی, ان سب چیزوں نے جو ہے ان کو گھیر رکھا ہے, پابند ہے. لہذا ان کے تعلیم یافتہ ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس کے مقابلے میں آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایک اگر آپ سڑک پہ جا رہے ہو, غریب آدمی جو جس کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگتا ہے تو وہ اس کو رک کے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی میں مطلب یہ کانٹا نکال دوں.
صحیح,
بغیر تعلیم والے لوگوں کا ہے. ہمارے عوام برے نہیں ہیں, ہمارے عوام کم تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود برے نہیں, ہمارے حکمران تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بہت برے.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM Youngstown Toronto.
جناب عظیمیہ صاحب میرے ساتھ ہیں, اور عظیمیہ صاحب معاملہ صرف یہ اتنا ہے کہ جو آپ کے انتہائی پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ وڈیرے گھروں سے تعلق رکھتا ہے, اور ان کو اپنی ہاں میں ہاں ملوانے کی اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ دے ڈو ناٹ وانٹ ٹو لسن. نو نمبر ون, عام آدمی بہت سادہ آدمی ہے, اس کے دماغ کو بہت تیزی سے زہر آلودہ بھی کیا جا سکتا ہے, ان کی یعنی اس کو امپریس بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے پاس میرا خیال ہے کہ وہ چوائس ہی نہیں ہے کہ وہ چوز کر سکے کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. آج پاکستان میں گجرانوالا میں جو ریلی ہوئی اس میں میاں صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے رابطہ کیا میری آخری خبر آنے تک, اور تمام کے تمام لیڈر صاحبان وہاں پہنچے تھے. جو میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا آپ نے مجھے اس کا جواب نہیں دیا. اتحاد تو بالکل کامیاب رہے گا ٹل دا گورنمنٹ فالز, بٹ آفٹر دی الیکشن, اور جب کبھی الیکشن ہوگا اگلا, اس کے بعد یہ تمام کے تمام ایک دوسرے کے لیے پھر گالی گلوچ شروع ہو جائے گی. چاہے وہ مولانا صاحب, یہ وہی مولانا صاحب ہیں جنہوں نے بے نظیر مرحومہ کے زمانے میں کہا تھا کہ میں عورت کی سربراہی کو اسلام میں چیلنج کرتا ہوں, اور یہی وہی ہیں جو اب مریم نواز کو, یعنی کال اور فیل میں تضاد کا تو عالم یہی ہے نا.
جی بالکل, ان کے والد صاحب نے کہا تھا, ان کے والد صاحب اور مولانا مودودی ان دونوں نے یہ کہا تھا کہ عورت کی سربراہی جو ہے وہ ممنوع ہے, اور انہوں نے اسی بنیاد پہ بے نظیر کی مخالفت بھی کی تھی, اور بعد میں لیکن حالات نے یہ بھی ثابت کیا کہ انہی کے منہ سے یہ کلوایا کہ ہم ہیں, بلکہ میری بے نظیر سے ایک دو دفعہ بات ہوئی تو میں نے کہا, یہ اس وقت مولانا صاحب کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے, تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی یہ مجھے بتائیں کہ یہ क्या वजह है कि आपने इनको इनका कश्मीर से क्या ताल्लुक जो आपने कश्मीर कमेटी के इनका चेयरमैन बना रखा है। तो उन्होंने कहा मियां साहब बात यह है कि बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजन लोगों को एंगेज करने के लिए बनाए जाते हैं, आपका क्या लेते हैं, कश्मीर पॉलिसी जिन्होंने चलानी है वो चला रहे हैं, ये कश्मीर कमेटी पे बैठे हुए अलाउंस खा रहे हैं, तो आज ये सब साथ है।
सैड, वेरी सैड।
मतलब ये है
वेरी सैड
कि भाई ये जो है इससे सैड सिचुएशन, लेकिन बात ये है कि ये जो इत्तेहाद हुआ है ना, ये इन्होंने इत्तेहाद नहीं किया है आपस में, ये इत्तेहाद इसी का क्रेडिट जो है वो इमरान खान को जाता है कि उसकी गलत पॉलिसियों और उसकी जो उसकी हुकूमत की जो नाअहली है उसने इन सब को मतलब फिर एक दफा इकट्ठा किया है। तो इनके इकट्ठा होने में इनका अपना मतलब हाथ कम है उसके मुकाबले में। बार दफा ये भी होता है कि मैं अपने दुश्मनों को अपनी हिमाकतों से मजबूत करता हूँ।
आपने बड़ी सही बात की, मगर जो सवाल मैं करती हूँ ना आप उस जवाब में नहीं आ रहे, मतलब मैं हर दफा आपकी गुगली का शिकार हो रही हूँ।
आई मीन गुगली का शिकार ना,
मतलब आप देखिए मेरा सवाल ये है कि ये हुकूमत अगर गिर जाती है और इलेक्शन होते हैं तो यही जो आज एक दूसरे की तारीफ में जमीन और आसमान के कल, और इससे पहले भी पाकिस्तान में ये होता रहा, यानी अपनी अपनी पड़ जाती है हर एक को, और वही जो एक दूसरे के साथ इस वक्त खड़े हुए इन्होंने ही एक दूसरे के दस्तों गिरबान, खासतौर पे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तो कभी भी नहीं बनी।
जी बिल्कुल आप सही कहती हैं,
तहरीक इंसाफ तो अब आई पिछले चार साल से, मगर आज तक
बिल्कुल
कभी भी नहीं थी बनी।
ये नहीं देखिए तहरीक इंसाफ को ये सिर्फ कह के बड़ी जिम्मा कर देना कि ये
मैं नहीं सर, मैं उनको बिल्कुल, मैं तो जो सवाल करी मुझे उसका जवाब चाहिए। हाँ, कि इलेक्शन अगर आज हो गया तो यही जो एक जगह खड़े हैं, इससे पहले भी ये कुछ करते चले आए, अब भी ये यही करेंगे कि एक दूसरे के दस्तों गिरेबान होंगे।
आरिफा जी ये माजी में भी लड़े हैं, देखिए ना शहबाज शरीफ कहता था कि सरदारी साहब को मैं घसीटूंगा, सड़कों पे घसीटूंगा,
एग्जैक्टली
पेट फाड़ के निकालूंगा, ये उन्होंने कहा।
मगर आज तक जरदारी साहब ने शायद कभी इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल नहीं किए थे, ये इन लोगों ने बल्कि ज्यादा किए थे
अपने तौर से किया है। सरदार देखिए ये इस गलाजत में सारी पार्टियां लदी हुई हैं, सारी पार्टियां, यानी जिनको आप कहते हैं कि दो साल में आए थे, दो साल आए हुए हैं। आप ये देखें कि शहबाज गिल मलाया यूनिवर्सिटी से PhD करने के बाद जो कुछ शिकागो में करके गए हैं उनका रिकॉर्ड मौजूद है, वो वहाँ पर एक माजूद के साथ कि हमारे जो पंजाब का कल्चर है उसमें जुगतबाजी को बड़ी अहमियत है कि भाई जुगतबाजी जो कर ले वो ठीक है। तर्जुमान है वो जुगतबाजी में लगे हुए हैं बजाय इसके कौम को किसी तामीर
सीरियस
ये नहीं। और इलेक्शन के बाद जो है ये बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये फिर इनकी पार्टी जो इत्तेहाद बनाया है ये फिर बिखरेगा।
मियाँ साहब आज आपके मियाँ साहब आपके हम नाम ने वीडियो लिंक से खिताब भी किया है
जी।
एक शख्स जो पाकिस्तान, यानी वेयर डू यू सी, अगर आप दिल की गहराई से अपने दिल पे हाथ रख के ईमानदारी से बताएं व्हाट इज आवर सिंसियरिटी लेवल विद पाकिस्तान, कि आप बीमार होके वहाँ से गए हुए हैं, आप हमारे इदारों को भी गलत कह रहे हैं, वीडियो लिंक पे भी इस सऊदी अरेबिया बिहाइंड इट। अगर देखिए जी ये सारा का सारा सिनेरियो इतना आराम से नहीं है,
उनकी सऊदी अरेबिया से एक दफा फिर अंडरस्टैंडिंग सी हो गई है, इसमें कोई शक नहीं। अभी रिसेंट जो इत्तलात मुझे आई है और काबिले भरोसा इत्तलात है उसमें यह है कि मियां साहब को जो है सऊदी अरब की एक दफा फिर अंडरस्टैंडिंग हुई
है। इस तमाम के
अपनी अपनी किसी मजबूरी की वजह से किया है, उनकी मजबूरी जो है उनकी जो पॉलिसियां हैं
exactly.
उसकी वजह से किया है। और ना सिर्फ ये, सऊदी अरब ने ये भी कहा है इमरान खान से कि जुल्फी बुखारी को आइंदा साथ नहीं लाएंगे, और आप देखेंगे कि सऊदी दौरे में अब जुल्फी बुखारी नहीं जाएंगे।
उसकी वजह ये है कि सऊदी वो शिया, पाकिस्तान में भी इस वक्त शिया सुन्नी का जो फसाद है उसके पीछे भी सऊदी अरेबिया का हाथ डेफिनेटली है। मैं इसमें कोई आर महसूस नहीं करती, और टर्की जो है वो अपनी ताकत पकड़ रहा है। आपको पता होगा, याद होगा कि कतर को इन्होंने एलिनेट किया था, मगर आज यूनाइटेड अरब अमारात ने और सऊदी अरेबिया ने कहा है कि वो कतर के साथ भी अपने ताल्लुकात, भूख पानी आपको पता है कतर के लोग मरने पे आ गए थे, उनके पास तो फूड की सप्लाई कोई नहीं थी, और सारी
बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। तो देखिए ना, तो ये भाई वो जो आप बात कर रहे हैं कि सऊदी अरब के साथ अंडरस्टैंडिंग, वो सऊदी का अपना एजेंडा, हर कौम का अपना एजेंडा होता है।
क्योंकि सऊदी अरेबिया टर्की को ताकत में नहीं देखना चाह रहा,
वो नहीं, वो आज नहीं, हम तारीखी राइवलरी, अभी भी तारीखी राइवलरी है। अगर आप जाके देखें तो सऊदी अरब के कयाम का जो है वो तारीखी राइवलरी है सऊदी अरब से। सऊदी अरब हो, लीबिया हो, शाम हो, इराक हो, ये सारे इलाके एक जमाने में सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा थे ना
जी सर, जी सर,
वहां से बटे हैं ना
जी।
तो फिर ये एक तारीखी राइवलरी है, वो अपनी जगह है। लेकिन और ये मियां साहब के साथ भी अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है तो सऊदियों की अपनी मजबूरियां जो है ग्लोबल, उनकी अपनी सिचुएशन में। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम दूसरों के एजेंडे को जो है वो हाथ पकड़ के जो बैठ जाते हैं, ये हमारी खराबी है। पाकिस्तान में जो हुक्मरान है वो दूसरों का एजेंडा लेके आते हैं। इस वक्त भी जो एजेंडा चल रहा है ना, वो अपना पाकिस्तान का कोई एजेंडा नहीं है। पाकिस्तान का अगर एजेंडा होता तो गंदम चोरी ना होती, गंदम महंगी ना होती, चीनी महंगी ना होती, और ये ब्लैक मार्केटियर जो हैं वो इमरान की पार्टी में घुसकर जनाब ये सारा काम कर रहे हैं। जो पहले वो आप ये देखिए कि पेट्रोलियम पर जो नवाज शरीफ हुकूमत का एडवाइजर था वही इनका भी एडवाइजर है। यानी दुश्मनियां फिर कैसी कैसी दुश्मनियां हैं ये, कि आप मतलब एडवाइजर वही है। उन सबका वजह यह क्या है कि कुर्सी और इख्तदार जो है वो मेरे हाथ से निकल के आरफा के हाथ में चला जाए तो वही लोग जो मतलब के मेरे साथ थे वो आपके पास आ जाते हैं। आपसे जो है माजिद साहब के पास इख्तदार चला जाए तो वो वहां चले जाते हैं।
फसली बटेरों की मौजूदगी, फसली बटेरों की मौजूदगी,
ये फसली बटेरे नहीं है, ये वो लालची माफिया है जो हर हुकूमत को सैबोटाज करने पे लगा रहता है। और हमारे यहाँ के हुक्मरान चाहे वो नवाज शरीफ हो, पीपल्स पार्टी हो, देखिए अब बाबर आवान की तारीख को ले लीजिए कि वो बेनजीर का एडवाइजर भी था, उनके मामला के मुकदमात भी लड़ता रहा, उसके बाद में वो जनाब अली, अब आज वो इमरान खान के साथ है। तो बात ये है कि इमरान खान ये तो कह देते हैं कि फलाना चोर, फलानी पार्टी चोर है, फलानी पार्टी चोर है, लेकिन उन चोर पार्टियों में से जो लोग, जो बच्चे बालिग होकर, जवान होकर, जिनके खून के अंदर ये चोरी भरी हुई है, वो अपने यहाँ ले आते हैं, अपनी टोकरी में डाल लेते हैं, तो फिर उनको तहफ्फुज़ हो जाता है। तो मैं तो अक्रॉस द बोर्ड ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि इमरान खान जो है वो भी उतना ही जिम्मेदार, उतना ही गंदा उसकी पार्टी है जितनी भी पीपल पार्टी है, जितनी नवाज शरीफ अपना पीपल पार्टी। कौन सी पार्टी मुकद्दस है? कोई पार्टी मुकद्दस नहीं है। लेकिन हमें अक्रॉस द बोर्ड करना नहीं आता, हम जज्बात में बैठ कर जो भी हुक्मरान होता है या उसके मुखालिफ हो जाते हैं और या उसके हम बाज गुजार हो जाते हैं, क्योंकि वो अगर हमें लिफ्ट करा दे, हमारे कंधे पे हाथ रख दे तो शायद हमारी या निजात हो जाएगी। निजात कहीं नहीं है, इसलिए कि ये जो माफिया है, ये नीचे जो हिरस और लालच का माफिया है, ये बाकायदा ये हर कुर्सी के इर्द गिर्द घूमता है, ये अशखास के गिर्द या नजरियात के गिर्द नहीं घूमता। अब ये मुझे बताइए कि बाबर अवान जो बेनजीर के साथ था उसका इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक बनता है?
इख्तदार
याद बेचकर इख्तदार, तो फिर बात तो वही है कि तो इन सब के पास कदर मुश्तरक जो है वो इख्तदार
है। बहुत शुक्रिया।
इख्तदार के लिए खर्चा और उसके लिए पाकिस्तान को जो है, पाकिस्तान के अवाम को और पाकिस्तान के निजाम को ये बिल्कुल ये लोग तौहीन के साथ देखते हैं।
इनमें से कोई एक भी पाकिस्तान के निजाम को इसलिए ना आज तक की किसी हुकूमत ने बेहतर किया, क्योंकि वडेरे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो अगर आम अपने मुजारे को शऊर दे देगा तो वो मुजारा कल वडेरे के बराबर आके बैठ जाएगा, और मेरा ख्याल है तालीम सबसे बड़ा मसला है। मियाँ साहब, महंगाई के हवाले से रोना रोया जा रहा है, आप नॉर्थ अमेरिका में हैं, मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर करती हूँ, और मेरा दिल चाहता है यस डॉलर की जो वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू रुपी मच 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 मोर है, और पाकिस्तान में आमदनी की शरह भी वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, मगर मैं ज़ाती तौर पे महसूस करती हूँ कि देयर वाज़ अ टाइम कि मैं पावर्टी को अगर आप देखते हैं ना, तो इस सिस्टम में जिसमें मैं रह रही हूँ, इस सिस्टम में भी पावर्टी का आलम बहुत बुरा है। बेशुमार लोग होमलेस हैं, बेशुमार लोग बिलो पावर्टी लेवल यहाँ पे भी रह रहे हैं, हालांकि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करती है, मगर देयर वाज़ अ टाइम कि मैं $50 लेके निकलती थी तो मैं गोश्त भी ले आया करती होती थी, मुर्गी भी ले आती थी, सब्जी भी खरीद दिया करती थी, मगर अब आप ग्रोसरी करने जाएं तो आप कुछ भी नहीं खरीदते तो 100 से ऊपर का आपका बिल बनता है। दिस इज वेरी कॉमन। डू यू हैव दिस काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन अमेरिका और नो?
श्योर, देखिए यहाँ भी कोरोना वायरस कोविड में खुराक की जो कीमतें हैं बहुत बढ़ी हैं, दूसरी कीमतें बढ़ी हैं, ये नहीं है बिल्कुल आपको, और यानी आपको महसूस भी होता है पावर्टी भी बढ़ी है क्योंकि कोरोना ने जो है जो तबाही कोविड 19 ने मचाई है अक्रॉस कनाडा अमेरिका सब जगह पर, और अमेरिका में ज़रा ज़्यादा, लेकिन ये है कि देखिए इनकी इकोनॉमीज बनी हुई हैं, गरीब आदमी रात को अब भी भूखा नहीं सोता, कब बहुत कम लोग होंगे जिन जो बेचारे इस कैफियत में हमारे अच्छा तो सिस्टम के अंदर पावर्टी के लिए एक सपोर्ट का बिल्ट इन निज़ाम है आपके यहाँ, आपने के यहाँ हुक्मरान जो है अगर उसको छींक भी आ जाए तो वो जनाब अली
दुबई चला जाता है,
अस्पताल में जाता है, नहीं मुल्क के सबसे बड़े अस्पताल में जाता है, सबसे बड़ा डॉक्टर उसकी अवेलेबिलिटी पर होता है, नहीं तो वो बाहर के मुल्क में चला जाता है इलाज करा के आता है। गरीब जो है अगर वो बिल्कुल आखिरी लम्हात पर भी मर रहा है तो यह मुमकिन है कि उसको अस्पताल में बेड भी ना मिले। ये जो चीज है ना, ये चीज हमें मतलब डिस्टिंग्विश करती है पावर्टी लेवल के हिसाब से बहुत घटके के भी हमारे यहाँ ये निज़ाम है कि इंसानी जान की कदर नहीं है बल्कि एक वीआईपी कल्चर है जिसमें आप अगर किसी वीआईपी को अगर आप देख लें ना और उसको उसके साथ चलते हो तो उसके साथ डॉक्टर्स चलते हैं, यानी ये है कि वो हालांकि वो तगड़ा होता है अच्छा हट्टा कट्टा होता है लेकिन उसके साथ डॉक्टर चलते हैं, और गरीब आदमी जो है वो तो डॉक्टर कंपाउंडर तक या नर्स तक उस बेचारे की रसाई नहीं होती। ये फर्क है, महंगाई जहाँ तक है वहाँ लोगों की आमदनी को आप देख लें और लोगों की आमदनी के हिसाब से जो पॉवर्टी लेवल है उसको आप देखें कि गंदम जो है गंदम पैदा करने वाला जो मुल्क है उसमें महंगाई का ये हाल है। आटा लोगों देखिए यहाँ लोगों की जरूरत आटा नहीं है, यहाँ लोगों की जरूरत जो है जब वो फूड की जरूरत कहते हैं उसमें चीज भी शामिल होता है, दूध भी शामिल होता है, ये सारी चीजें शामिल होती है। हमारे यहाँ गरीब आदमी की जो जरूरत है वो ये है कि आटा, और फिर उसके बाद अगर उसे कुछ उसके साथ में पका के खाने के लिए चने की दाल या मसूर की दाल मिल जाए। तो आप ये देखिए ना कि हमारे यहाँ गुर्बत जो है जिसको गरीब कहते हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है, उसको सर्वाइवल करना है, उसको फाके से बचना है। समझे, यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर ये है कि भाई अगर फाके से नहीं बचना बल्कि एक न्यूट्रिशन फुल्ली न्यूट्रिशियस फूड जो है उसके साथ जिंदा रहना है। तो इस आप फर्क को जरा सामने रख के कहें बिल्कुल पावर्टी हर जगह दुनिया में बढ़ रही है लेकिन हमारे यहाँ जो पावर्टी है उसमें लोग मर रहे हैं, बच्चे फरोख्त कर रहे हैं। देखिए और ये नहीं है कि इंसान को पता है कि मुझे बीमारी लाख होगी वो इलाज नहीं करा रहा है इसलिए तो वो इलाज नहीं करा सकता,
नहीं कर
या वो इलाज करा ले नहीं अफोर्ड ही नहीं कर सकता, या वो अपने बच्चों को भूखा मार के अपने लिए दो दस टाइम की दवाई ले आए और या फिर अपने आप में भुगत ले तो वो अपने ऊपर भुगत लेता है।
बहुत शुक्रिया मियाँ साहब भाई, खुदा गवाह है कि यू आर ऑलवेज इन द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मेरा ख्याल है कि अल्लाह जानता है कि दिल से आपके लिए दुआ भी निकली कि अल्लाह
ये कब कहा, लेकिन वो है पंजाबी में कहते हैं भोका जड़ा है भोका खूह के बॉटम तक चला जाता है, पानी ले आए तो गल बनती है, जो पानी ना ले आए तो फिर गल नहीं बनती।
I love you, Mia साहब। अजीम भाई बहुत प्यारे भाई
हैं। जानती है ना आप?
जी,
तो आप जानती है ना?
बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो जो चीज पंप को चलाती है और पानी को लेके ऊपर की तरफ
ऊपर आता है, लेकिन अगर उसके अंदर से उसके दो त्रोपे निकले हुए हो तो पानी नीचे ही रह जाता है।
चलिए जी, आज आपसे ये भी सीख लिया, बहुत शुक्रिया अजीम भाई। इंशाल्लाह आपसे तो कभी कभी शामिल होते रहा करें, वी ऑल नीड यू, आपके तजुर्बा
मुझे इस शमूलियत से ज्यादा जो है ना आपके साथ शराकत जो है वो मुझे जरा ज्यादा
मुझे और देखिए एयर पे बिल्कुल एयर पे जब शामिल होते हैं तो दैट्स ऑल व्हाट इट इज। बहुत शुक्रिया अजीम भाई,
थैंक यू वेरी मच।
हमारे बहुत प्यारे भाई नासिर भाई इस पूरे के पूरे प्रोग्राम की बैक पे थे। ऑफकोर्स ज़ाहिर है आपको तो ये जिस सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, अगर आपको बिज़नेस लोन चाहिए तो नासिर शाह साहब से रब्ता कर लीजिएगा। بزنس لون لے کے دینا. شاہ جی السلام علیکم, کی حال چال ہے؟
وعلیکم السلام جی, کیا حال ہے بھائی؟
آپ لوکنگ ویری گڈ.
تھینک یو.
ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. شاہ جی بہت سے بزنسز پرابلم میں بھی جا رہے ہیں, بینکس کی کیا صورتحال ہے, اور اگر کسی شخص نے اپنے بزنس کو سہارا دینے کے لیے اس کو بزنس لون چاہیے تو واٹ کین یو ڈو؟
بالکل, بہت اچھا سوال پوچھا آپ نے. ایکچولی بات بالکل صحیح آپ کی, اور آج کل وہ ہوتا ہے نا جسے کہتے ہیں پک اینڈ چوز والا کام ہوا ہے. یہ نہیں ابھی بینک ہر ڈیل کو وہ کہتا ہے جی لے آؤ کر لیں گے, وہ ایسا کام نہیں ہو رہا. پہلے تھا ایسے, کوئی بھی ڈیل دیتے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی اس کو کرنے کی, لیکن اب وہ کہتے ہیں جی وہ ڈیل میں دم ہے یا نہیں ہے, یا کرونا اس کو کرونا نے اس کو افیکٹ کیا یا نہیں کیا. یہ بڑی چیز ضروری جو پوچھتے ہیں سب سے پہلے, اور انہوں نے ایک اپنی ایک آپ کہہ لو پوری ہسٹری بنا لی ہے, پوری ڈیٹیل میں انہوں نے ہر جو بزنس ہے اس کو سیپریٹ اس کو ایک نمبر دے دیا ہے. یہ نمبر ون بزنس ہے آج کی ڈیٹ میں, یہ نمبر ٹو ہے, نمبر تھری, نمبر فور, ہر بزنس کی ایک کیٹیگری بنا دی ہے.
ایون اگر آپ نے بزنس لون لینا ہے اس صورت
میں, اس میں بھی لون ہے, یہ آلریڈی بزنس میں ہے. بزنس لائن بھی چاہیے ہوتی ہے, جب ہم کوئی بھی ہمیں کوئی کلائنٹ کال کرتا ہے بھی ہمیں بزنس لائن چاہیے یا بزنس لون چاہیے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے پہلے اس سے پوچھتے ہیں, ہم لوگ دو چار منٹ لگاتے ہیں بھائی آپ نے کرنا کیا اور کرتے کیا ہیں, پھر اس کے بعد ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں بھائی یہ آپ کا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا, کیونکہ ایکسپیرئنس جو ہوتا ہے نا آلویز وہ آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہمارا اتنے سالوں کا ایکسپیرئنس ہو گیا ہے, 20 سال تقریباً مجھے اسی فیلڈ میں ہو گئے ہیں, اور 20 سالوں میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, اور کوشش کی ہے جو بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں. بہت سارے لوگ صرف کہتے ہیں جی انٹرسٹ ریٹ دلا دو, دیٹس اٹ, ہمیں کچھ نہیں چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہے وہ بھی لازمی دیکھا کریں, کیونکہ انٹرسٹ ریٹ تو وہ ملنا ہی ملنا آپ کو, وہ ہماری کوشش ہوتی ہے, کیونکہ ہمارا کیونکہ ہم والیم بزنس کر رہے ہوتے ہیں, جب بھی کوئی والیم بزنس کر رہا ہوتا ہے ہر لینڈر کی کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ جڑا رہے. ہماری کوشش ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ بینیفٹس مل سکتے ہیں اپنے کلائنٹس کو دلائی جائیں, یہ بڑا ضروری چیز ہے. اور بہت سارے لوگ صرف اور صرف انٹرسٹ ریٹ کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ٹرمز اینڈ کنڈیشن پڑھتے ہی نہیں ہیں.
ادر بینیفٹس
دیکھیں, دوسرا جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا انہوں نے ہر بینک نے اپنی ایک کیٹیگریز لسٹ بنا لی ہے, اس لون کو دینا ہے ہم نے, اس لون کو ہم نے نہیں دینا, ٹھیک ہے, بزنس لائن یا لون یا جو بھی کہہ لیں. تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے بھی کئی جگہوں پہ جا کے پتا چلتا ہے بھائی یہ جب ہم کوئی بھی ڈیل پکڑتے ہیں ہم اس پہ میک شور کر کے اس کو سمجھتے ہیں پہلے اچھی طرح, پھر اس پہ بینک کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, پھر اس کو کلائنٹ کو بتاتے ہیں بھائی تیرا کچھ نہیں ہو سکتا یا ہو سکتا ہے اور کیسے ہو سکتا ہے, اس کو سارے کا سارا طریقہ, اس کو ساری فائل کو بنانا اور آگے پیش کرنا وہ ہماری ایکسپرٹیز ہے.
تو پریزنٹیشن از دا مین
جی, وہ بڑی ضروری چیز ہے. اگر آپ کو یہ چیزوں کا ایکسپیرئنس نہیں ہے تو آپ کی ڈیل, بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے نئے لوگ جو ابھی آپ کہہ لو بھی ایک ایک ویک میں دو دو ویک میں مورگیجز کا کورس کروا رہے ہیں جو کہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور وہ ان لوگوں کی وجہ سے سارے کے سارے جو کہتے ہیں نا یہ کام ہمارے خراب ہو رہے ہیں یا کام ہوا نہیں یا لاسٹ منٹ ہماری ڈیل ڈکلائن ہو گئی ہے, صرف ان لوگوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو بالکل نئے اس بزنس میں آئے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا اپنے سننے والوں اور دیکھنے والوں کو, بھائی جب بھی آپ کسی کے ساتھ ڈیل کریں پلیز اس کے بارے میں پہلے جانیں آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے, آپ کا کتنا ایکسپیرئنس ہے, اور پھر جا کے آپ اپنی ڈیل اس کے حوالے کریں. یہ کبھی نہ دیکھیے گا بھی آپ کا وہ فیملی فرینڈ ہے, آپ کا وہ فرینڈ ہے, آپ کا وہ کزن ہے, چاچا ماما تایا, اور اس کے حوالے کر دیا آپ نے, کیونکہ یہ جو آپ انفارمیشن اس کو دیتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ انفارمیشن ہوتی ہے اور آپ کی بہت زیادہ اس میں پرائیویسی ہونی چاہیے, اور اس میں اگر آپ نہیں ان چیزوں کا دھیان رکھتے تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ٹرائی بیس پہ کام پکڑ لیتے ہیں اور بعد میں کام خراب کر کے سوری کر لیتے ہیں بھائی سوری کام نہیں ہوا. ہمارا اور باقیوں کے میں کیا فرق ہے, کیونکہ ہمارا 20 سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں, ہم کوشش کرتے ہیں جب بھی کوئی کام پکڑے اس کو میک شور کرتے ہیں بھائی اگر کام ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں بھائی کام ہو جائے گا, اگر کام نہیں ہو سکتا تو بالکل آپ کا بھی ہم ٹائم نہیں ضائع کرتے اور اپنا بھی ٹائم بالکل ضائع نہیں کرتے, اور ہم پہلی سوری کر لیتے ہیں بجائے اس سے پہلے بھی آپ کا 2-4 ویک کے بعد سرپرائز دیں بھائی یہ کام نہیں ہونا. تو اس لیے بہت ضروری ہے جب بھی آپ کوئی بھی مورگیج کروانی ہو, لونز کروانے ہو, تو پہلے اس کے بارے میں جانیں پہ وہ بندے کو کتنے سال ہو گئے ہیں کام میں اور کتنا کام کر چکا ہے اور کن کن لینڈرز کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو میں ایک چیز کی ایک گارنٹی دیتا ہوں, آپ کا کام کبھی خراب نہیں ہوگا, جو لاسٹ منٹ جو خراب ہوتی ڈیلز وہ کبھی نہیں ہوگی اور آپ کی کامیابی ہوگی ہوگی.
بہت سے لوگ شاہ جی سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں, ٹرک ڈرائیورز ہیں, آپ کوئکلی ہمیں یہ بتائیے کہ اگر ان کے گھر میں ایکویٹی اور وہ نکالنا چاہیں, یو ہیو کوئک فیو منٹس, کہ ایکویٹی نکالنے کے لیے ظاہر ہے پورا کا پورا پیپر ورک دوبارہ کرنا پڑے گا. ہاؤ کین یو ہیلپ دیم اگر کسی نے ایکویٹی میں سے پیسہ لینا ہے یا اگر کوئی سیلف امپلائڈ ہے اس کو مارگیج کی بھی ضرورت ہے, تو واٹ کین یو ڈو؟
جی بالکل, اور ہمارے پاس ہر طرح کا پروگرام ہے. اگر کوئی سیلف امپلائڈ ہے اس کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ہے, اگر کوئی امپلائی ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ہے, اگر کوئی اوبر چلا رہا ہے, کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے تو اس کے لیے ڈفرینٹ پروگرام ہے. تو ہمارا جو ایکسپیرئنس یہی کہتا ہے جب بھی کوئی کلائنٹ ہمیں کال کرتا ہے within 3 منٹس میں ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں, زیادہ ٹائم ضائع نہیں کرتے. within 3 منٹس میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ ڈیل ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی, اور اس کو فون پہ ہی بتا دیتے ہیں, آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. جب ہم سمجھتے ہیں بھائی یہ ڈیل ہو سکتی ہے, پھر اسے کہتے ہیں آؤ ملو اور آپ کو باقی جو انفارمیشن آپ ہماری جو ضرورت کی ہیں وہ آپ سے مانگیں گے. نمبر ہمارا بڑا ایزی ہے, اس لیے ہم نے نمبر ایزی رکھا تاکہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں آپ کو نوٹ کرنے میں آسانی ہو. 647 تو آپ کو یاد رہے گا, 741 صرف آپ نے یاد رکھنا ہے, 741 اور 9000 یہ بھولنے والا نمبر نہیں ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی انفارمیشن چاہیے ریگارڈنگ مورگیج لونز تو آپ ہمیں ضرور ایک دفعہ چانس دیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھی ہمارا جو ایکسپیرینس ہے یا ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے یا باقی لوگوں کا طریقہ. میں آلویز اس لیے آن ایئر باجی کہتا ہوتا ہوں, پہلے آپ گھومو پھرو چیک کرو, آخر میں ہمیں کال کریں. پہلے کبھی کال کرنے کی ضرورت نہیں ہمیں, کبھی بھی یہ نہ لگے تاکہ آپ کو پتہ نہیں وہ باقی لوگ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں. ہم تھوڑا سا ہٹ کے کام کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں بہت سارے سال ہو گئے ہیں اس فیلڈ میں اور ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور جو بھی سیکھا ہے کوشش کرتے ہیں اپنی کمیونٹی کو ساتھ لے کے چلنے کی, ان کی خدمت کرنے کی. اور کسی نہ کسی بہانے خدمت کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ ہمیں جو نالج ہے, ہمیں جو ہمارا ایکسپیرینس ہے وہ آپ تک اچھے طریقے سے پہنچایا جائے. نمبر ایک بار پھر 647-741-9000. اور آج کا ریٹ میں بتانا چاہوں گا, آج کا جو مورگیج کا ریٹ ہے 1.74. بھاجی یہ بھی پہلے آپ ریٹ نہیں سنا ہوگا, پچھلی دفعہ میں نے اناؤنس کیا تھا 1.79, آج جو میں اسپیشل ریٹ لے کر آیا ہوں 1.74. اگر آپ کو فکس 5 سال کی مورگیج چاہیے تو ہمیں کال کریں 647-741-9000. ریٹ کے ساتھ ساتھ صرف اور صرف اگر آپ کے پاس 5% کہیں پڑا ہوا ہے, صرف 5% سیونگ کہیں پڑی ہے, تو آپ اپنے گھر کے مالک بن سکتے ہیں. اور میں آلویز آج کل کے جیسے جس طرح ریٹس وغیرہ اچھے ہیں اور پرائسز اچھی ہیں, بس اتنی اچھی نہیں ہے, لیکن جو آپ کی سیونگ ریٹ میں ہو رہی ہے اگر آپ کیلکولیٹ کریں آپ 5 سال پہ, تو آپ کی بہت ساری سیونگ ہو سکتی ہے اگر آج اپنا آپ گھر لیتے ہیں. بے شک آپ کی پرائس زیادہ ملی ہے, 10-20,000-50,000 آپ کے گھر کی پرائس زیادہ ملی ہے, لیکن جو آپ سیونگ انٹرسٹ ریٹ میں کر رہے ہو اگر اس کو ملٹیپلائی کریں گے تو اس میں ون ون سچویشن ہے. نمبر سیم 647-741-9000. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کمرشل مورگیج چاہیے, کوئی بھی ہوٹل موٹل گیس اسٹیشن یا کوئی فرنچائز لینی ہے یا کسی پلازے میں کوئی یونٹ بائی کرنا ہے, تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. بڑی آسانی کے ساتھ آپ کو کمرشل مورگیج دلا سکتے ہیں. انٹرسٹ ریٹ جو آفر کرنے جا رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے, 3.49 پہ اگر آپ کو کمرشل مورگیج چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کریں 647-741-9000. اور اس کے علاوہ اگر آپ کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کسی طرح کا, بے شک چھوٹا بزنس ہے بڑا بزنس ہے, ایک لون ہے اس کے بارے میں پہلے بتانا چاہوں گا. اسے گورنمنٹ گارنٹی لون بھی کہتے ہیں, ایس بی اے لون بھی کہتے ہیں, اور اس کو ایس بی اے لون بھی کہتے ہیں. اور سب سے بڑی اس لون کی خوبی کیا, آپ کی پرسنل گارنٹی صرف اور صرف 25% ہے. اوپر نہ کرے اگر آپ کا بزنس نہیں چلا کسی وجہ سے, نہ تجربے کاری ہے, کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے, اگر آپ کو بزنس بند کرنا پڑ گیا تو صرف اور صرف 25% واپس کرنا ہے, اور 75% تک گورنمنٹ معاف کر دینا ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے, اگر آپ 25% واپس کرتے اس کے بعد آپ کو بینکرپسی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. نمبر سیم 647-741-9000. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی سیکنڈ مورگیج چاہیے کسی بھی صورت میں, ایمرجنسی ضرورت پڑ گئی یا کوئی آپ کو بیک ہوم جانا پڑ گیا, تو ود ان 24 آورز میں اپ ٹو 1 ملین چاہیے, تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کال کریں. بغیر کریڈٹ چیک کیے, بغیر جاب کی انفارمیشن کے آپ کو اپ ٹو 1 ملین مل سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی بھی بزنس لائن چاہیے تو بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتی ہے. میں آلویز یہ کہتا ہوتا ہوں بھی پہلے اگر آپ نے کوئی بھی کسی طرح کے بھی بزنس میں ہے, بے شک پچھلے 2 سال سے, تو آپ کو لائن آف کریڈٹ لے کے رکھنی چاہیے. کیونکہ لائن آف کریڈٹ کا فائدہ کیا ہے, آپ کو جب ضرورت پڑے گی تب جا کے आप यूज करते हैं तो उतना ही इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा जितना आपने यूज किया है। लेट्स से 100,000 की लाइन ऑफ क्रेडिट आपके पास है तो आपको सिर्फ 5,000 यूज करना है और सिर्फ आपको 5,000 पे ही इंटरेस्ट रेट देना है। 95,000 आपका पड़ा हुआ है बैंक के पास अमानत की तरह, तो आपको तब यूज करना है, जब भी यूज करना है सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट रेट आपने देना है। तो इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल करें 6477419000 और बड़ी आसानी के साथ 50,000 से लेके 2 मिलियन तक आपको बिजनेस लाइन मिल सकती है। 50,000 से लेके 2 मिलियन की लाइन चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और आप उसमें शर्त एक ही है कि आप पिछले 2 सालों से बिजनेस में हो। अगर 2 सालों से बिजनेस में और बिजनेस को बेटर करना चाह रहे हैं, नंबर सेम 6477419000। और हमारे पास बहुत सारे बिजनेस ऐसे आए हैं, फ्रेंचाइजेज आई हैं, बहुत सारे बिजनेस आए हैं और आप बड़ी आसानी के साथ आपको लोन भी करवा देंगे, बिजनेस भी दिलवा देंगे। नंबर सिर्फ आपने अपने पास हैंडी रखना है, बहुत इजी नंबर जो है 6477419000, 6477419000। जी बाद भाई,
थैंक यू सो मच नासिर शाह साहब, एंड नंबर अगेन 6477419000, 6477419000 इनका फोन नंबर है। और सब माजरा चाहते हैं, आज हमारी खबरें 15 मिनट डिले हो गई, पर नो प्रॉब्लम, we'll do the news right after these messages. Shah sahab, bahut shukriya aapka.
Thank you ji.
आप CIBC Global Money Transfer के साथ बहुत ही आसानी से अपने घर से विदेश पैसे भेज सकते हैं, वो भी $0 ट्रांसफर फी पर। आप पैसे ऑनलाइन या CIBC के मोबाइल ऐप से भेज सकते हैं। आज ही अपना पहला ट्रांसफर करें और पाएं $50। अधिक जानकारी के लिए cibc.com/transfer पर जाएं।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने ले या सलाह लेण ले आज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
पिंड दा मजा हुन कैनेडा विच वी, कैलेडन सब्जी फार्म तो ताजा हरियां ऑर्गेनिक सब्जियां दे नाल हरी मिर्च, लौकी, करेले, बैंगन, मूली, मेथी, धनिया, साग, मटर, गाजरां, करेले, खीरे ते शलजम ते होर भी बहुत सारी सब्जियां खुद अपने हत्था नाल उगा के बेचते हैं ताडे लई। अपना फार्म ते अपनी ही दुकान अज ही पहुंचो, कैलेडन सब्जी फार्म 12050 एयरपोर्ट रोड, कैलेडन एयरपोर्ट एंड मेफील्ड रोड 905-965-3633 9056-965-3633।
नाज़रीन, वेलकम बैक अगेन। एंड सब नॉर्मली मैं कहता हूँ कि 5:15 होने वाले हैं और आई चलते हैं आपको न्यूज़ की जानिब, मगर आज जरा न्यूज़ डिले हो गई, माजरा चाहते हैं। एंड 5:32 हमारी घड़ी में हो चुके हैं। नई ताज़ा तरीन खबरें पाकिस्तान हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, दुनिया भर में क्या हो रहा है, और सब इसके साथ साथ यहाँ पर टोरंटो, ओंटेरियो, कनाडा में क्या हो रहा है, सारी चीज़ों को अपडेट करेंगी शाजिया मलक जी। अस्सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम आज भाई, क्या हाल है? ठीक है
अल्हम्दुलिल्लाह।
अगर आ गया हो तो हम शुरू करें एक और लफ्ज़ आपके लिए।
आ गया
आ गया मींस अगर आपकी इजाजत हो तो।
अच्छा 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 अच्छा,
आ गया हो तो।
आ गया हो तो, आ गया बहुत पहले आ गया था,
बहुत पहले आ गया। अच्छा अच्छा, वेरी गुड माजिद भाई, चलें ठीक है। तो जब तक वो हमारी जो है वो एक खातून थी ना, वो हर वक्त मियाँ को कहती थी भाई दुनिया के इस कैपिटल में लेके जाओ, इस कैपिटल में लेके जाओ, तो वो हमेशा कहता था कि ये जो हमारे घर का कैपिटल है ना किचन, उसको भी कभी विजिट। तो जब तक अरफा बाजी हमारे इस ऑफिस का कैपिटल विजिट कर रही है ना, हम फटाफट ये खबरें कर लेते हैं हमारे,
फौरी तौर पे,
फौरी तौर पे। ठीक है जी, तो मजद भाई, हमेशा हम कहते हैं कि जी हमारी वेबसाइट पे जाएं, आज भी उधर बहुत सारी नई खबरें हैं और आपके सारे आपके मतलब की हैं, जो भी अब नई चेंजेस गवर्नमेंट लेकर आ रही है तो वो आप उधर जाएं। जैसे भी आज हम सुनाएंगे भी कुछ खबरें तो आपको पता चल जाएगा कि क्या न्यू है वहां पे, तो आप डिटेल्स वहां पे पढ़ सकते हैं, फिर आप हमारा टीवी देख सकते हैं। फिर हम आपको हमेशा कहते हैं कि आप प्लीज हमारे सपोर्टर्स जो हैं, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनको सपोर्ट करें, तो आपकी सपोर्ट की वजह से फिर वो भी एनकरेज रहते हैं और हमारे साथ जो है वो जुड़े रहते हैं। तो आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी वेबसाइट eawaz.com जरूर विजिट किया करें। तो जनाब हम अपने स्पॉन्सर्स का आपको पैगाम देते हैं जल्दी से। विलेज टेस्ट में होते हैं फैसल चट्टा साहब, और आज वीकेंड भी है, अगर आपको घर पे खाना लेके जाना है या वहां पे बैठ के खाना है, बाहर आप खा सकते हैं, अंदर तो आप नहीं खा सकते हैं, तो आप इनको फोन कर लें फैसल चट्टा को। इनका नंबर है 9052323663। न्यू फातिमा ग्रोसर्स फॉर योर ग्रोसरी नीड्स। कादर भाई को फोन करें ऑन 9058487000। एशियन फूड सेंटर 9057931338। कोई भी आपकी ग्रोसरी की नीड्स हैं उसके लिए। और करी डिशेस कीजिए, तमाम ही डिशेस स्पेशलिटी डिशेस हैं, आप ट्राई तो करें, आप देखें तो सही। तो ये हैं ईस्ट ऑफ मकावन और शेपर्ड पे, और इनका नंबर है 4165466444। और कैलेडन सब्जी फार्म, ये हैं एयरपोर्ट और मेफील्ड के इंटरसेक्शन पे, इनका नंबर है 9058409000 एंड 9059653633। और जनाब हम आपको बताना चाहते हैं आज फिर से एक बहुत ही जबरदस्त रियल स्टेट का प्रोजेक्ट आया है, ये है न्यू प्रोजेक्ट्स इन ब्रैडफोर्ड, ये है टाउन हाउसेज
ब्रैडफोर्ड
ब्रैडफोर्ड। अच्छा जी,
ब्रैडफोर्ड इज अ डिफरेंट नियर
ब्रैडफोर्ड,
दिस इज ब्रैडफोर्ड इज क्लोजर टू राइट हियर अप नॉर्थ।
अच्छा जी, ब्रैडफोर्ड में जी टाउन हाउसेज आए हैं, 25 फीट सेमीज हैं और 38 फीट के डिटैच्ड लॉट्स हैं, 3 और 4 बेडरूम्स हैं इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम 680,000, असाइनमेंट एंड 5 अप्लायंसेज इंक्लूडेड, डिपॉजिट स्ट्रक्चर अफोर्डेबल है, क्लोजिंग है 2021 में सितंबर में। तो आप रजिस्ट्रेशन अभी क्योंकि जारी है तो आप कॉल कर सकते हैं ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए टीम प्री कंस्ट्रक्शन को ऑन 4163203320, 4163203320। और जनाब हॉटस्टार, अगर आपको $45 में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन लेनी है तो आप प्रोमो कोड ई आवाज यूज करें और इनको विजिट करें ऑन hotstar.com/CA। और जनाब क्विक चेक, इनका जो है कस्टमर एप्रिसिएशन वीक जो है शुरू हो रहा है, ऑन 17th, 18th, 19th रहेगा, तो आप इनको विजिट करें अगर आपको ऑयल फ्री जो है फ्राइड चिकन खाना है। और जनाब सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की माजिद भाई, ये तो बहुत ही अच्छी जो है उन लोगों के लिए जो कि अभी काम ढूंढ रहे थे और उनको नहीं मिल रहा था, तो आप अगर फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं अपने टाइम में, अच्छी आपको सैलरी चाहिए, बेनिफिट्स चाहिए और गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, तो आप जो है ये ब्रैम्पटन फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो हैं ये अपने करियर जो हैं ओपन कर रहे हैं, आप इनको विजिट करें ऑन brampton.ca/firerecruit। तो इसमें जाके आप देखेंगे तो आप वहां पर जाके अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी ये अपॉर्चुनिटी है। अच्छा माजिद भाई, हम अपनी खबरें स्टार्ट कर लेते हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मुझे नहीं समझ आ रही उनके एडवाइजर्स कौन हैं, तो क्योंकि माशाल्लाह से जिस तरफ वो कनाडा को लेके जा रहे हैं ना, मुझे लगता है कि पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर कनाडा बेचारा एक अकेला सा खड़ा रह जाएगा, बाकी सारे जो है ना ऐसे वो एरोज बना के ना, वो जो आप केमिस्ट्री में बनाते थे उसमें खाली एनमी ऐसे दुश्मन ही नजर आएंगे खाली। अच्छा जी, अब आज जो है प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो साहब ने कहा है कि ये जो अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में जो अब झगड़ा हो रहा है, इसके अंदर भी हम जो है अब मीडिएशन करेंगे। आर्मीनियन प्राइम मिनिस्टर जो है इनके साथ, इन्होंने निकोलाय के साथ बात की और वो कह रहे हैं जी नगोर्नो काराबाक में जो तुम लोगों के साथ हो रहा है हम उसके ऊपर जो हैं बड़े वो हैं, और हमने ऑलरेडी टर्की को जो है अपने जो सप्लाइज हैं वो बंद कर दिए हैं, और जो है हम टर्की से भी अब बात करेंगे तैयब अरदोगान साहब से, और हम उनको कहेंगे कि ये जो इतनी टेंशन है, यानी आपको सतवें मल्ले जो हमारे कहते हैं पंजाबी में बैठे हुए, आपको कैसे पता चल गया कि भाई टर्की खराबी कर रहा है और जो है वो आर्मीनिया नहीं खराबी कर रहा अजरबैजान के साथ, तो क्योंकि वही ऑब्वियस बात है और ये बड़ी मतलब है हमें खराब, मुझे तो खास तौर पे बिकॉज आई एम अ वेरी वेरी फेयर पर्सन, लेकिन मुझे बड़ी बुरी लगती है ये बात करनी कि चूंकि अब ये दोनों कंट्रीज मुसलमान हैं तो अब ये बड़ी तकलीफ दे रहे हैं, खासतौर पर आजकल टर्की इनको बड़ा तकलीफ दे रहा है और चाइना लोगों को बड़ी तकलीफ दे रहा है, तो क्योंकि ये इनके क्योंकि वही होता है ना माय वे और द हाई वे, या तो मेरी हाँ में हाँ मिलाओ, अगर नहीं मिला रहे हो तो बस तुम बड़े गलत आदमी हो भाई बस, तो ये बिल्कुल ही अब ये कर रहे हैं। तो आज जी उन्होंने कहा है कि हम जो है डी एस्केलेशन ऑफ वायलेंस चाहते हैं और ये सही नहीं चल रहा है, और जो है ये हम टर्की से भी बात करेंगे कि वो ये ना इसको अजरबैजान को, हालांकि अजरबैजान के बारे में टर्की ने कहा कि हमारी सिर्फ मॉरल सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है, हम कोई इसको आर्म्स या कुछ नहीं दे रहे हैं. लेकिन जी आज ये हुआ. अच्छा जी, दूसरी बात, ट्रूडो साहब ने कल जो हमने वो बताया था कि वो जो चाइनीज जो एम्बेसडर हैं यहाँ पे, कॉन्ग प्यू जो हैं, उन्होंने बड़ा बुरा मनाया था कि भाई ये जो आप कह रहे हैं कि कोअर्सिव डिप्लोमेसी कर रहा है चाइना, तो ये आपकी जो है बड़ी यानी नाजायज बात है जो आप कर रहे हैं. आपने वो जो हमने सारी चीजें कल गिनवाई थी कि ये आपने किया था. अच्छा जी, आज ट्रूडो साहब ने फिर से कहा कि आई रीइटरेट एंड आई वोंट स्टॉप, मैं हमेशा ये कहता रहूंगा कि चाइना की कोर्सिव डिप्लोमेसी है, हमारे दो माइकल्स जो हैं इनको इन्होंने पकड़ा हुआ है मेंग वांजाओ की वजह से, और जो हैं ये यहाँ पे बड़ी डिक्टेटरशिप है और ह्यूमन राइट्स की बड़े प्रॉब्लम्स हैं. ओ माय गॉड, मैं जब ये आज बातें इनकी फिर से सुन रही थी, मैंने कहा ट्रूडो साहब के ऊपर कोई कोविड इफेक्ट तो नहीं हुआ क्या है, इनको इतने भड़के हुए क्यों हैं आज?
नहीं तो क्योंकि देखे ना कि आप
कैसी फॉरेन पॉलिसी चला रहे हैं भाई आप.
नहीं नहीं, फॉरेन पॉलिसी तो हर एक के अंदर कुछ पीछे जो है, दे मस्ट बी सम रीजन व्हाई ही सेइंग दीस थिंग्स, कि अगर दो माइकल्स को पकड़ा हुआ है एंड उन पे कोई चार्जेस अभी तक उन्हें नहीं लगाए, उन्हें जो चार्जेस लगाए वो चार्जेस वो हैं कि दे आर नॉट प्रूवन येट, है ना. So, of course, two citizens of Canada are there right now. So, he has to say all these things. यहाँ पर लोगों को अपनी आवाम को भी तो खामोश करवाना है उन्होंने. And when it comes to Azerbaijan, दो जो लोग लड़ रहे होते हैं ना, तो उनमें से एक को साथ देना होता है. दोनों को साथ नहीं दे सकते ना आप. तो एक या तो आप मीडिएशन कराएं, दोनों को मिला के एक टेबल पर बिठाएं, या वरना ये कि आप उनमें से एक को पिक करें. तो आर्मेनिया को पिक कर लिया है उन्होंने, जब आर्मेनिया को पिक किया है तो ऑफ कोर्स द अदर पार्टी इज गोना गेट अपसेट ऑन दैट.
हां जी, ये मजीद भाई, और इन्होंने फिर एक ये बात भी की है ट्रूडो साहब ने, उन्होंने कहा कि जो लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, और हम इनके साथ मिलके जो है, और इनकी जो फिलोसफी है इनके साथ मिलके हम काम करना चाहते हैं. तो मतलब मुझे बड़ी हैरत हुई कि भाई इनकी क्या ग्रेट फिलोसफीज हैं, क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देख लें
यूरोप, अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, उसके साथ साथ फिर कनाडा, ये तो इन्हीं के साथ मिलेंगे ना, तो ये एक ही सारी एक ही कौम है.
तो बड़े जी अजीम वैल्यूज हैं भाई इनके, तो हम तो बहुत पीछे रह गए हैं शायद. अच्छा जनाब, एक आदमी था कोरी हुरन, माजिद भाई आपको याद ही है, वो रेडियो हॉल में वो जो बहुत सारे आर्म्स लेके अपनी गाड़ी उसकी खड़ी हुई थी और वो उधर पहुंच गया था और उसमें खतरा पैदा हो गया था कि वो शायद प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को भी और वो जो गवर्नर जनरल है उनकी भी
हर्ट करने वाला था,
उनको हर्ट करने वाला है. तो उसको जो है माजिद भाई अब नेक्स्ट मंथ नवंबर 6 को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, और इसके ऊपर जो है ऑलरेडी जो है इसके ऊपर 21 चार्जेस लगाए गए थे. तो ये जो है एक और एक मेजर आज की न्यूज थी. टोरंटो का आपको पता ही है, जॉन टोरी साहब हर वक्त रोते रहते हैं ना माजिद भाई, पैहे खत्म हो गए हैं, पैहे दो. आज जी ऑडिटर जनरल जो हैं बेवरली रोमियो, उन्होंने, हालांकि उनका वो कोई ताल्लुक नहीं है, वो दूसरे कोई उसमें नाम है उनका रोमियो, बेवरली रोमियो, उन्होंने कहा है जी कि टोरंटो वेस्टेड $31 million.
हाउ?
अच्छा जी, अब हाउ, अब इसमें ये है, इन्होंने जी वो जो ये जो स्नो के कॉन्ट्रैक्ट्स देते हैं, तो इसमें होना ये चाहिए कि जो गाड़ियां हैं ना माजिद भाई, उनके अंदर जीपीएस ट्रैकर्स लगे होते हैं, तो वो उस जीपीएस ट्रैकर्स की वजह से उनको पता चल सकता है कि जब स्नो पड़ रही है तो कौन कौन सा व्हीकल उस कॉन्ट्रैक्टर का किस किस जगह पे है, वो सफाइयां कर भी रहा है कि नहीं भी कर रहा है. तो इन्होंने आज जो ऑडिट रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा जी कि ये जिसको कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को दिया गया था, उनके बहुत सारे जो वो थे वो जीपी, अच्छा उसने नंबर दिया एग्जैक्टली, वो कहती है कि उसमें से जो इनके पास जो वो थे जो ट्रक्स थे, उसमें से कई ट्रक्स ऐसे थे कि जिनके अंदर जो है वो जीपीएस ट्रैकर्स नहीं थे. और दूसरी इन्होंने ये काम करनी थी कि 850 व्हीकल्स के अंदर ट्रैकर्स ही नहीं थे. अच्छा, दूसरी इन्होंने क्या काम करनी थी कि इन्होंने उनको कहना था कि अगर काम करोगे तो हम आपको पैसे देंगे, राइट. अच्छा, 850 जो व्हीकल्स हैं वो अनअकाउंटेड फॉर हैं, कि उन्होंने काम किया भी है बर्फ के बीच में कि नहीं किया जब उनको बुलाया गया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जब भी बर्फ गिरेगी आप आगे सफाई करेंगे. अच्छा, अब पता ही नहीं है कि उन्होंने आके सफाइयां की भी हैं कि नहीं भी की हैं, फिर भी उनको जो है पेमेंट्स की गई हैं. तो वो कहने लगे, उसने कहा हुआ है कि भाई इसका कोई ट्रैक चल रहा है, कोई आप ट्रैकिंग कर रहे हैं कि आपने बस ये पैसे ऐसे लुटाने पे दिए हैं? ये पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हर जो ट्रक कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी का है उससे पूछा जाएगा कि भाई किस इलाके में गए, पूरी वो लॉग शीट्स होती है ना, किस इलाके में गए, कितनी बार गए, कितनी बार सफाई की। तो वो कहते हैं जी आपने इतना पैसा जो है $31 million आपने जो है जाया कर दिए। ओके जी, अच्छा जी, यॉर्क रीजन जो है उसको भी अब मॉडिफाइड स्टेज टू की तरफ ले जाया गया है। आज फोर्ड साहब ने अनाउंसमेंट किया और उन्होंने आज सारे स्टेटिस्टिक्स दिए हैं। उन्होंने कहा जी कि यॉर्क रीजन के अंदर जो केस का रेट है वो 49% है, कंपेयर टू जो है 38.7 पर 100,000 पीपल, जो कि अबव प्रोविंशियल एवरेज है, और जो इसलिए इनको मिनिमम ऑफ 28 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दिस मंडे इनको जो है इनको भी मॉडिफाइड स्टेज टू की तरफ किया जाएगा। और उन्होंने कहा है कि उसकी वजह यह है कि हमने जो ये सारी हम ट्रैकिंग देख रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि इसमें जो लोग हैं यॉर्क रीजन के अंदर बिल्कुल जो है कोई एसओपीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं, चीजें जो है उसके अंदर उसकी वजह से स्पाइक आता जा रहा है वायरस में, तो इसलिए जो है इसको भी अब ऑलरेडी जो है ऑटवा, टोरंटो और पील जो है वो तो थे मॉडिफाइड स्टेज टू में, और अब जो है ये यॉर्क रीजन जो है उसको भी लाया गया है। एलिमेंट्री स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं मजद भाई टोरंटो में, टोरंटो ने ये कहा था कि स्टूडेंट्स को एक ऑप्शन दी थी कि या तो आप इन पर्सन जाके तालीम ले लें या आप ऑनलाइन कर लें। फिर क्या हुआ, जब स्कूल शुरू हुए वो केसेस आने शुरू हुए, ज्यादा बच्चे फिर ऑनलाइन जाना शुरू हुए,
20,000 पीपल।
हाँ, तो टोरंटो स्कूल बोर्ड ने आज ये प्रोविजन ही खत्म कर दिया। उसने कहा अब आप जिधर हैं आप तालीम वैसे ही हासिल करेंगे, आप अगर इन पर्सन ले रहे हैं तो आप इन पर्सन करेंगे जब तक के स्कूल का
नो स्विचिंग।
हाँ, नो स्विचिंग, और स्विचिंग अगर आप जो हैं ऑनलाइन कर रहे थे तो अब आप ऑनलाइन ही करेंगे। और उसकी वजह यह है, वो कहते हैं जी जिस वक्त ये बच्चे चेंज ऐसे ऐसे करते हैं तो उसके लिए बहुत ज्यादा अरेंजमेंट्स फिर करने पड़ते हैं,
सही बात,
और उससे फिर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, तो इसलिए हम ये अब बार बार नहीं करेंगे, तो फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड स्टाफ एज वेल। अच्छा जी, आज जॉन टोरी साहब ने एक तरफ चाइना से लड़ाई है, एक तरफ उनका ऐप यूज कर रहे हैं। जॉन टोरी साहब ने टिकटॉक आज जी टिकटॉक से जो यंगस्टर्स हैं उनसे आज वो एड्रेस कर रहे थे, वो यंगस्टर्स को एड्रेस कर रहे हैं, कहते हैं कि भाई फाइव हेल्थ जो आपने जो की जो चीजें हैं वो आपने करने हैं, हाथ धोने हैं हमेशा, क्लोज कॉन्टेक्ट नहीं करना, क्राउडेड जगहों पे नहीं जाना, मास्क पहने, घर पे रहें अगर आप सिक हैं, लोगों के साथ उन्हीं के साथ हैंग आउट करें जो आपके नियर बाय हाउस होल्ड में है। तो मैं वही सोच रही थी, मैंने कहा एक तरफ तो कनेडा जो है वो लड़ाई कर रहा है या चाइना से, दूसरी तरफ उनकी ऐप यूज कर रहा है।
नहीं, तो टिकटॉक तब ऑलमोस्ट अमेरिकन हो गई ना, डोंट वरी अबाउट
इट। हाँ, चलो ठीक। तो बस वो आज जी जॉन टोरी ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो यंगस्टर्स हैं उनको उनके साथ आप ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं व्हेन यू टॉक ऑन टिकटॉक, ठीक है जी। तो हाँ जी, अच्छा मोहित भाई, जो लॉन्ग टर्म केयर होम्स हैं उनका हमने पहले भी कुछ दिन पहले बताया था कि ट्रूडो साहब ने कहा है कि अब हम रेड क्रॉस को भी ले आएंगे उसमें, लेकिन अभी भी उसमें जो है काफी प्रॉब्लम्स हैं, वहां पे शॉर्टेजेस हैं, और तकरीबन जो है 71 लॉन्ग केयर जो होम्स हैं उनके अंदर आउटब्रेक्स फिर से आ गए हैं, और इससे पहले भी आपको पता है कि 1500 बंदे इन लॉन्ग टर्म केयर होम्स में मर गए थे। तो वो कह रहे हैं कि अब हमारे पास स्टाफ नहीं है एंड वी आर रियली रियली फेसिंग प्रॉब्लम्स। तो अब देखें, ये भी एक डेवलपिंग स्टोरी है, ये पता चलेगा अब ऑन्टेरियो आने वाले दिनों में क्या करेगा इसके बारे में। अच्छा जी, बड़ी इंटरेस्टिंग ये न्यूज है, दो जगहों पर टोरंटो के अंदर जो है वो बाय इलेक्शन होने वाले हैं, एक तो टोरंटो सेंटर है, एक यॉर्क सेंटर है। तो यहां पे October 26 को होगा, और एडवांस पोल्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ओपन ऑन
टुडे
October 16, टुडे विच इज टुडे, आज से ओपन है। तो इसमें जो है ये जो टोरंटो सेंटर है माजिद भाई, इसके अंदर है लिबरल जो कैंडिडेट जो उन्होंने पिकअप किया, आपको पता ना ये वो थी उसकी जो है फाइनेंस मिनिस्टर जो है बिल मॉर्नियो, उनकी है ये राइडिंग जो थी। तो ये अब इधर से लिबरल्स ने जो अपना किया है वो फोर जो जो ब्रॉडकास्टर थी मार्सी लेन उनको किया है, ब्रायन चैंग है एनडीपी से, बेंजामिन गौरी शर्मा कंजर्वेटिव्स की हैं, और ग्रीन पार्टी की एनमी पॉल हैं जो आई थी। और आपको पता है उन्होंने बड़ा एतराज किया था कि ये बाकियों को एज अ कर्टसी बैठ जाना चाहिए मेरे उसमें, तो जो है
दैट्स व्हाट आई आस्क्ड हर टू दैट टाइम इन इंटरव्यू, कि मैंने उनसे ये कहा था कि आप एज अ कर्टसी डिड यू मेक अ फोन कॉल, शी सेज नो आई हैवंट मेड अ फोन कॉल, यस आई हैवंट आस्क्ड देम, मगर एज ए कर्टिसी यस,
हाँ करना चाहिए। तो ये है जी यहाँ पे, और यॉर्क सेंटर जो है उससे है 11 sacks, ये जो है लिबरल्स की हैं, बिजनेसमैन पास्टर जूलियस थियांगसन जो है वो कंजर्वेटिव्स के हैं, जो एंड्रिया वास्क्विज हैं वो एनडीपी की हैं, साशा जेवरेला जो हैं वो हैं ग्रीन पार्टी की, और वेरी इंटरेस्टिंगली फ्रॉम हियर जो पीपल्स पार्टी ऑफ कैनेडा के जो लीडर हैं मैक्सिम बर्नियर वो भी हैं। आपको पता है उन्होंने पहले एक दूसरी एक राइडिंग से करने की कोशिश की थी, वहां से ये कामयाब नहीं हुए थे, तो नाउ ही इज ट्राइंग फॉर दिस राइडिंग, इज नॉट गोना विन. हाँ जी, मुझे भी ऐसे ही लगता है. ठीक है जी, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने के लिए. अच्छा जी, एक अच्छी खबर आई है ऑन्टारियो के लिए. रॉश जो है उसने कहा है कि दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट 500 मिलियन over the next 5 years in global pharma technical operations in Mississauga. तो ये आज एक अच्छी खबर है. वो कह रहे हैं कि इट विल ऑल्सो क्रिएट 500 jobs. तो पहले रन जो है उसके अंदर 200 करेंगे और फिर जो दूसरा रन होगा उसके अंदर 300 और लोगों को हायर करेंगे. ठीक है जी. अच्छा जी, टोरंटो पुलिस ने आज बड़ा ही कमाल किया है. एक केस था जिसमें कि एक बच्ची थी क्रिस्टीन जैसप जो थी 9 साल की.
वो जो थी 1984
तो उसको जो है मर्डर कर दिया गया था. और उसमें जो टोरंटो पुलिस थी उनका जो नेबर था मोरीन उसको पकड़ लिया था इन्होंने. और तो उसको बार बार पकड़ते थे और उसको जो है वो कैद कर देते थे. और फिर आपको पता ही है उसने $1 million के लिए जो है कॉम्पनसेशन मांगी थी गवर्नमेंट से, जो कि उनको देनी पड़ी थी. आज अब उन्होंने फाइंड आउट किया जी कि ये आदमी केल्विन हूफर जो है ये जो था ये
एक्चुअल किलर था.
हाँ, एक्चुअल वो किलर था. ये ही वॉज नोन टू द फैमिली, लेकिन फैमिली का और पुलिस का भी कभी शक इसके ऊपर नहीं गया. ही वॉज ऑल्सो द नेबर, लेकिन इसके ऊपर कभी शक नहीं गया. तो फिर लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली इसकी जो है वो डेथ होगी 2015 में. तो पुलिस कहती है कि ये था असल में जो है उस बच्ची के साथ जिसने ज्यादती की और मारा उसको, वो ये था. तो आज जो है 36 years हो गए हैं इसके से. उसके बाद इन्होंने ये फाइंड आउट किया. एक 20 साल का नौजवान है मजीद भाई, उसको बाजू में और हाथ में जो है गोलियां लगी हैं स्कारब्रो के एरिया में. तो उसको अब लेकर गए हैं वहां पे हॉस्पिटल में लेके गए हैं. और वो जो गाड़ी है सस्पेक्ट की वो है इट इज डार्क ब्लू फोर्ड और निसान मैक्सिमा. तो उसको पुलिस जो है ढूंढ रही है. एक खातून है जी 81 years की, उनको भी एक क्यूब वैन ने बे व्यू विलेज के अंदर मार दिया. हुआ यह था कि वो अपने जो है वो उसके ऊपर पाथवे पे वॉक कर रही थी और वो जो क्यूब वैन वाला है वो अपनी गाड़ी पीछे कर रहा था तो उसको नजर नहीं आई तो उसने मारी, तो वो उसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है. अरफा पाजी ने थोड़ा सा तो ये बताया है, एक्स मैक्सिकन जो ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं जनरल सेल्वाडोर, इनके ऊपर वो जो ड्रग्स के चार्जेस लगाए गए हैं. और माजिद भाई इस आदमी की जो हिस्ट्री है ना वो पढ़ने वाली है, कभी आप पढ़ें. इट इज सच एन अमेजिंग हिस्ट्री कि वैसे ये ही वॉज, आपको पता है, हाईएस्ट एंड मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑफिशियल था ये मैक्सिकन आर्मी का. और इसके ऊपर कभी आप शक कर ही नहीं सकते थे कि ये ऐसे
ड्रग्स,
क्या ये ड्रग्स के अंदर होएगा. और फिर क्या होता है ना माजिद भाई, कि सिर्फ इन चीजों में ड्रग्स इन्वॉल्व नहीं होती हैं, इसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इन्वॉल्व होती है. उसमें क्या करते हैं, वो जो गरीब लड़कियां हैं उनको या तो कभी उठा के ले आते हैं या कभी उनकी मर्जी से भी, कभी कभी उनको बोलते हैं कि ये ड्रग्स ऐसे खुली ले जानी पॉसिबल नहीं होंगी. तो तुम क्या करो, तुम वो छोटी छोटी पुड़ियां बना के देते हैं और वो कहते हैं कि इसको खा लो तुम. उसको वो हनी लगाकर देते हैं और वो कहते हैं इसको खा लो. सो द मोमेंट दे रीच यूएसए तो इनका पेट औरतों का काट के वो सारी वो चीज जो है निकाल लेते हैं. कभी कभी क्या होता है मजद भाई, वो पूरी की पूरी ड्रग जो है खुल जाती है पेट में और वो उस औरत की जो है वो डेथ हो जाती है. अच्छा, अगर इस सिलसिले की आप ये सारी के ये यूएस और मैक्सिको के बीच में ड्रग ट्रेड कैसे होती है ना मजद भाई, इट्स अगेन एन अमेजिंग अमेजिंग सीरीज जो है क्वीन ऑफ द साउथ, वो आप देखें. अमेजिंग, आपको वो पता चलेगा कि ये सारा कार्टल जो है, मेयर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जनरल्स, कौन कौन इसके अंदर जो है इन्वॉल्व्ड है. अमेजिंग अमेजिंग वो है. तो आप वो देखें तो वो आपको जो है इसमें बिल्कुल आप रिलेट कर पाएंगे इसके साथ. अच्छा जी, रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है और ये भी ये जरा अच्छी खबर है. ये जो है यमन के जो वॉरिंग पार्टीज हैं उन्होंने जी कहा है कि अब हम ये वॉर शोर खत्म कर रहे हैं और अब हम जो है उन्होंने एक्सचेंज किए 3 तैयारे जो हैं वो भर के लाए हैं. और उन्होंने क्योंकि हुथीज और वो गवर्नमेंट के लोग लड़ रहे थे ना, जो इंटरनेशनली रिकग्नाइज गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा जी हमारी अब कोई लड़ाई नहीं है, वी वांट पीस इन द कंट्री. और इसीलिए आपको पता है सऊदी ने जंप किया और सऊदी कोलिशन में आ गया था. तो उन्होंने कहा जी हम सारी लड़ाइयां खत्म कर रहे हैं, एक दूसरे के प्रिजनर्स हम वापस कर रहे हैं. एंड और उसके अंदर बहुत सारे प्रिजनर्स उनमें से सऊदी भी हैं, तो उन्होंने वो सऊदी भी प्रिजनर्स भेज दिए. उन्होंने कहा जी ये सबको हम आजाद कर रहे हैं, तो वो सब करके. तो अब यहाँ पे सोचा जा रहा है कि हो सकता है कि ये जो 2014 से डिस्टर्बेंस शुरू हुई थी और कोअलिशन जंप कर गया था 2015 में, तो अब इस रीजन में भी पीस आएगा. वाइस प्रेसिडेंट जो अमेरिकन जो है कैंडिडेट उनकी हैरिस जो है जो बाइडन की, वो जो है जी अपनी सस्पेंड कर रही है कैंपेनिंग, क्योंकि उनके दो जो है उनको हो गई है, स्टाफर को हो गई है. और बाइडन साहब जो है वो तो बिल्कुल चूंकि एक्सपोज नहीं थे तो वो अपने ट्रेवल्स जारी रखेंगे. लेकिन जो इसके अंदर एक्सपर्ट सबसे बड़ी जो चीज देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि जो बाइडन और कमला हैरिस जहां जहां भी जा रहे हैं फेस कवरिंग करके पूरे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, जबकि जो बाइडन साहब, जबकि जो ट्रंप साहब हैं और उनके साथ जो उनके वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो कोई बिल्कुल माइक पेंस साहब जो हैं बिल्कुल कोई ना वो कर रहे हैं एसओपीज फॉलो कर रहे हैं ना फेस कवरिंग कर रहे हैं. तो वो कह रहे हैं कि ये बड़ा सोर्स ऑफ कंसर्न है और ये कोई भी पब्लिक हेल्थ गाइडलाइन जो आदमी खुद हेड करने जा रहा है वो नहीं कर रहा है तो ये कैसे रहेगा. तो उनकी दोनों की बड़ी जो है वो तारीफ हो रही है. ट्रंप साहब ने जी कैलिफोर्निया जो स्टेट है उसने कहा था कि ये जो बहुत ज्यादा आगे थे डिजास्टर आ गया था जो फायर्स हो गई थी वाइल्ड फायर्स की वजह से उनके स्टेट में, तो उसकी वजह से उनको रिलीफ फंड चाहिए. तो जी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एब्सोल्युटली ना कर दी है. वो कहते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम दिस हैज हैपेंड इन यूएसए, कभी भी जब रिलीफ फंड मांगा जाता है तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट कभी ना नहीं करती है.
वैसे और ऑन टॉप ऑफ दैट इतना बड़ा फायर
जी बहुत ज्यादा, तीन थे,
millions
थे भी तीन,
millions of hectares of
बिल्कुल
land has been just
six recent fires. तो वो कहते हैं बहुत ज्यादा मैसिव नुकसान हुआ है तो उसकी वजह से हमको हेल्प चाहिए. तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा वी आर नॉट रेडी टू गिव यू एनीथिंग एट ऑल. ठीक है जी. अच्छा जनाब, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग आज एक स्टोरी आई है. ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने आज ब्लेम किया है चाइना, रशिया और इंडिया को. इन्होंने कहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े पोल्यूटर्स हैं, एयर को जो है ये खराब कर रहे हैं. अच्छा ये हुआ था कि ये बहुत, ये सब कंट्रीज जो है आपको पता ही है कि वो जो पेरिस अकॉर्ड हुआ था उसमें जमा हुए थे और उन्होंने कहा था क्लाइमेट के ऊपर हम काम करेंगे. 2016 में जब ये विन किया तो 2017 में ही विड्रू. उन्होंने कहा जी मेरे मुल्क में तो जो कोल से रिलेटेड जॉब्स हैं और दूसरी जॉब्स हैं और वो जो हैं वो बहुत इफेक्ट करेंगी.
दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ दैट, दे हैवंट साइन द डील.
जी दे डिडंट साइन. और उसने ट्रंप साहब ने कहा कि मेरे मुल्क में तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे तो मेजर्स इन प्लेस हैं. तो हम तो आज उन्होंने वही कहा, उन्होंने कहा जी कि जो हम कर रहे थे मैंने अपना ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को सेव किया है, मैंने अपने जो है जॉब सेव किए हैं और कोल अपनी इंडस्ट्री को सेव किया है और मैं बिल्कुल इस बात को मानता ही नहीं हूं कि अमेरिका खराब कर रहा है. तो इसलिए अमेरिका को पैसे देने की भी जरूरत नहीं है. तो इसलिए जो है ये पैसे जो है ये तीन मेन कंट्रीज हैं जो खराब कर रहे हैं एनवायरमेंट को, तो इनको चाहिए कि ये जो है इसके ऊपर वो करें. तो ये आज बड़ी अजीब बात थी. अच्छा जी, जो बाइडन साहब ने, आपको पता है कुछ अर्सा पहले जब ट्रंप साहब आए ही थे तो उन्होंने कहा था कि हम जितने भी कुछ मुस्लिम कंट्रीज उन्होंने किए थे और उनको कहा था कि इनके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए हैं. तो जो बाइडन साहब ने आज उसी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये जो मुस्लिम कंट्रीज कुछ के ऊपर बैन लगाया गया था, मैं जैसे ही आऊंगा मैं इस बैन को खत्म करूंगा, अगर मैं प्रेजिडेंट बना तो मैं इसको खत्म करूंगा और एक मैं प्रॉपर जो COVID-19 की जो स्ट्रैटेजी है वो मैं बनाऊंगा और मैं उसके ऊपर चलूंगा. ट्रंप साहब ने जी आज बहुत ही बड़ी बात कर दी है. उन्होंने कहा है कि आई सी अ मैसिव रिपब्लिक sweep in November 3 elections and I see massive red wave coming. जी तो उनको लग रहा है कि वो फिर से जीतेंगे और वो कह रहे हैं कि जी हमारे, हालांकि वो नंबर्स जो है हम सारे ही बता ही रहे हैं लोगों को कि वो बाइडन साहब को जरा ज्यादा फेवर कर रहे हैं जितने भी सर्वेज आ रहे हैं. ये कहते हैं जी नहीं हम करेंगे और वी विल मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और हमारे बड़े ये वैल्यूज हैं तो फलाने हैं तो टमकाने हैं. मुझे एक बुक याद आ रही माजिद भाई, द प्लॉट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, केन कोवलिक की लिखी हुई थी ये किताब और इसके अंदर बड़ी उसने इंटरेस्टिंग बातें की हुई थी. उसने कहा कि अमेरिका जो है ना, और न्यूयॉर्क टाइम्स का उससे भी इंटरेस्टिंग इसके ऊपर रिव्यू आया था, उसने कहा कि ये जो बुक लिखी हुई है ना सही इस राइटर ने पंच मारा है ऑन यूएस इंपीरियलिस्टिक जो उनका एटीट्यूड है उसके ऊपर. इसमें उसने बुक में क्या लिखा हुआ है, उसने कहा है कि हमेशा ये लोग जो हैं, हमेशा ये लोग जो है अमेरिकन जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये मुख्तलिफ मुल्कों के इलेक्शंस के अंदर जो है इंटरफेयर करती रही है, वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रही है. और उसने पूरे मुल्कों के नाम लिखे हैं. उसने कहा जी वियतनाम, वेंजुएला, ग्रीस, कांगो, निकरागुआ, जो है ये ग्वाटेमाला, ये इन सब कंट्रीज के अंदर, कांगो, इनके अंदर वो इंटरफेयर करते रहे हैं. तो जिस वक्त ये बातें करते हैं वैल्यूज की और जिस वक्त ये कहते हैं कि जी रशियन इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, तो फिर इनको भी अपने भी वैल्यूज के ऊपर जो है थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि हमारे वैल्यूज क्या हैं. हमारे अंदर कोई ना इंटरफेयर करे, हमारी चीजों को कोई ना छेड़े, लेकिन हम हर किसी की चीज को जाके छेड़ेंगे और हम हर किसी के साथ इंटरफेयर करेंगे. तो माजिद भाई अगर आपको टाइम मिले आप जरूर ये बुक पढ़ें, द प्लॉट टू कंट्रोल द वर्ल्ड बाय डैन कोवलिक. बहुत इंटरेस्टिंग किताब है ये लिखी हुई, बहुत ही इंटरेस्टिंग. अच्छा जी, AFP की आज एक रिपोर्ट है और ये कह रहे हैं कि एक जो चाइना जो है साइनोवैक बायोटेक की जो वैक्सीन है सिर्फ $60 में मिल सकती है आपको. एक्सपेरिमेंटल ड्रग है. AFP का कहना है कि इसको वर्ल्ड लेवल पे अप्रूव नहीं किया गया, लेकिन इन्होंने चाइना के अंदर ये मैसिव स्केल पे अपने लोगों को दी है और ये प्रॉमिसिंग है. तो अगर कोई लेना चाहता है तो इसको सिर्फ $60 में मिल सकती है ये चाइना की मेडिसिन. और आपको छेना की मेडिसिन आपको क्योर कर सकती है, ठीक है जी। तो वो कहते हैं, तो अब इसकी एफिकेसी नहीं उनको पता, लेकिन वो कहते हैं जी टू डोजेज आपने लेनी है फॉर 28 डेज और एंड दैट्स अबाउट इट। हिंदुस्तान टाइम्स की जी आज एक फिर से इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। कल हमने हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट बताई थी ना माजिद भाई की, उन्होंने जाके मुंबई के जो हॉटस्पॉट्स हैं ड्रग पेडलर्स पकड़े हैं बहुत सारे, और वो आज उन्होंने कहा जी अब यही काम हम अब जो लॉन्च करने लगे हैं दिल्ली में अब करने लगे हैं। वो कह रहे हैं जी कि दिल्ली के अंदर हम इसलिए क्रैक डाउन कर रहे हैं, और उन्होंने माजिद भाई आज जो ये स्टेटिस्टिक्स दिए हैं ना मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई है, लेकिन कितनी बड़ी कंज्यूमर देखें आप मार्केट है इवन ड्रग्स के लिए। इंडिया जो है एनसीबी का कहना है जी कि इंडिया के अंदर जो है 2.1% पॉपुलेशन जो है वो ओपियोइड यूज करती है, जो ग्लोबल ओपियोइड यूज से 3 times ज्यादा है, ठीक है जी, और 4 times एशिया से ज्यादा है। अच्छा जी, वो कहते हैं कि अगर हम एक अंदाजा लगाएं कि 20 lakh आउट ऑफ द 77 lakh पीपल, अगर 20 लाख लोग जो हैं वो भी अगर ओपियोइड यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब है माजिद भाई के एक दिन में 1000 kilograms जो है वो हेरोइन या ओपियोइड ये यूज होते हैं। वो कहते हैं जी अगर ऐसा है